तो आप ये कह रहे हैं कि ये तो निश्चय हो चुका है कि सतमार्ग पर चलना है, परंतु इसमें दुविधा है, कब तेज चलें कब स्लो चलें, चलना है। इसके बारे में महाराज जी ने बड़ा ही स्पष्ट मार्गदर्शन किया है। उन्होंने समता विलास में बड़ा ही क्लियर करके लिख दिया कि स्वार्थ और परमार्थ की जो राह है, इसके लिए समय सीमा बांधकर प्रोग्राम बनाओ और उस पर फिर दृढ़ निश्चय से चलो। इसीलिए महाराज जी ने सिमरन के बारे में बड़ा स्पष्ट निर्णय कर दिया, क्योंकि वो तो सारी चीज का बेसी है, आपकी पूरी लाइफ का बेसी है। अब ये तो गुरु जानता है कि ये पूरा का पूरा जन्म आपको ईश्वर भक्ति के लिए मिला है, कंप्लीट जन्म आपको ईश्वर भक्ति के लिए मिला है। लेकिन ईश्वर भक्ति करनी आती नहीं हमको, समझ भी नहीं ईश्वर के बारे में, अपने बारे में, संसार के बारे में ठीक ठीक समझ भी नहीं। तो इसीलिए आपको गुरु टाइम दे रहा है, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि समय सीमा बांधकर अपने स्वार्थ और परमार्थ का प्रोग्राम बनाओ, और वो भी बैकग्राउंड में एक निश्चय आपने रखना है या एक आपने जीने का तरीका रखना है। वो कहते हैं कि मर्यादा का जीवन जीना है। तो सत्पुरुष का मर्यादा से मतलब ये होता है, क्योंकि जब लक्ष्य आपका जीवन का पता है सत्पुरुष को, आपके ही दुखों का अंत करने के लिए वो आपको मार्ग बता रहा है। वो कह रहा है कि मर्यादा का जीवन का मतलब ही ये है कि ईश्वर मार्ग कहीं आपके इस स्वार्थ जीवन के कारण सफर ना करें। स्वार्थ सफर कर सकता है, वो तब बड़ा नुकसान नहीं है। परमार्थ यदि सफर कर गया तो जिंदगी ही आपकी नाश हो गई। इसीलिए रामायण में स्पष्ट कहा गया, तो सीता जी ये बात स्पष्ट कह रहे हैं, आत्म हनन गति जाए, जिसने ईश्वर मार्ग पर चलने में लापरवाही की उसको वही पाप लगता है जो आत्महत्या करने वाले को पड़ता है, लगता है। सुसाइड तो किया आपने, क्या गया? आपकी जो लापरवाही है इस मार्ग में चलने के कारण, स्वार्थ के कारण, क्योंकि स्वार्थ जीवन में टाइम बढ़ा लेते हैं, हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं। ईश्वर निश्चय हमारा बड़ा ही वीक होता है, इसलिए हर चीज की जिम्मेदारी मेरी ही है। पक्का ये निश्चय होता है कि मेरे कारण ही इनको सफलता मिलेगी, सारे परिवार को, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। इस निश्चय के साथ ही मैं जीता हूं। उसको ये पता नहीं कि ये मेरी गहरी अज्ञानता है। बार बार सारे सत्पुरुष एक कहते हैं, एक बात कहते हैं कि कर्तव्य भाव से संसार में कार्य करो। पिता हूं तो पिता का कर्तव्य है इस संतान की रक्षा करना, उसको योग्य बनाना, समझे, उसके रहन सहन खान पीन के बारे में ख्याल रखना। लेकिन मर्यादा शब्द तो हर जगह फिट हो रहा है, तो टोटल एक्टिविटीज आपकी हैं वो मर्यादा में चाहिए। मैं सारी मर्यादा को उल्लंघन कर देता हूं इस भय से कि स्वार्थ जीवन बिगड़ जाएगा। इस बात का भय नहीं हो रहा है कि परमार्थ जीवन बिगड़ जाएगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी तो फिक्र नहीं हो रही है, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसकी फिक्र हो रही है। तो इसलिए सारे निर्णय मेरे उल्टे हो जाते हैं और मार्ग मेरा जो है वो छूट जाता है। तो स्वार्थ का जीवन आपका जो है गुरु के मार्गदर्शन के विरुद्ध चल रहा है, तो बताइए जिन संस्कारों को, स्वार्थ के संस्कारों को साफ करने के लिए मनुष्य जन्म लिया था, तू वो संस्कार बढ़ा रहा है, गहरे कर रहा है। तो जिसमें टाइम ज्यादा लगाएगा संस्कार वो गहरे होंगे नहीं होंगे, तो कर क्या रहा है तू? इसका सीधा संबंध है, तुझे होश ही नहीं है। نہ تو یہ اپنی آیو کا ہوش ہے. آیو ہوتی ہے 15 کی. رام کرشن پرمہنس نے کتنے اپنے چیلے تیار کیے تھے؟ کتنی کتنی؟ کسی کی 14 کی آیو تھی, کسی کی 13 کی آیو تھی, کسی کی 15 کی آیو تھی. یہ آتا ششیوں کا. اس رہس کو وہ جانتے تھے. وہ کہتے تھے اس آیو میں ہی جو ہے سنسکار تیار ہوتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ابھی تو 40 کے ہوئے ہیں, ابھی تو 10 اور ذرا کما لیں, ذرا سیٹ کر لیں پریوار کو, اس کے بعد گمبھیرتا سے چلیں گے. مطلب سنسرٹی 50 کے بعد آئے گی جب بوڑھے ہو جاؤ گے. 50 سے تو اولڈ ایج اسٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کی. آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اب زندگی کتنی بچی ہے آپ کی, کیا کرو گے. تو ہم سوارتھی لوگ اسی طرح سے سوچتے ہیں, وقت نکل جاتا ہے. کائے کی بدھیمانی رہی, جو بدھیمانی کا کام تھا وہ تو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا. جس میں سیم برتا تھا اس کو آپ نے جو ہے وہ زندگی کا جینے کا طریقہ بنا لیا. اس کو کیا ملنا ہے آپ کو, وچار کر کے دیکھو کیا ملنا ہے. کون سی نشیات میں بدھی لے کے جاؤ گے یہاں سے آپ؟ نشچیاتمک بدھی اسے کہتے ہیں جس میں کیول ایشور کا نشچے ہوتا ہے. سارے سنسار کا مالک وہی ہے, میری دیہ کا مالک بھی وہی ہے, میرے پریوار کا مالک بھی وہی ہے, میرے دیش کا مالک بھی وہی ہے. پرارب کے انوسار ساری لیلا اس کی چلے گی. اس لیلا کا مالک میں نہیں ہوں, وہ ہے. یہ ہے نشچیاتمک بدھی. اسی لیے ایسا جیو کیول ایشور کو لکش لے کے چلتا ہے. نہیں, سب کچھ کرتویہ بھاؤ سے کرتا ہے مریادا میں, اور ہونا نہ ہونا, کام کا بننا بگڑنا اس کے حکم میں دیکھتا ہے. اور ہم رات دن اسی کی فکر کرتے تھے, ارے دیکھو یہ کام بگڑ گیا, یہ کام میں نے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اتنا زور لگا دیتے ہیں کہ ایشور کی یاد کرنے بیٹھتے ہیں تو وہی زور یاد آتا ہے, وہی زور ہمارے دماغ میں بنا رہتا ہے, کیونکہ پورے ڈوب کے کر رہے ہیں اس کو. تو سوارتھ کے سنسکار ہم کتنے گہرے کر رہے ہیں اور ہم کو ہوش ہی نہیں اس بات کا. اور آپ نے ایشور کو پراپت کرنا ہے, ایشور انتریامی. اب بتائیے جو جیو ہے جو اپنے آپ میں پیور کانشیسنیس ہے, اور یہ سب جو ہیں من کے سنکلپ, من کی ڈیزائرس یا واسنا جو کچھ بھی ہیں, یہ سب کور چڑھے ہوئے ہیں اس کے اوپر, اس کانشیسنیس کے اوپر کور چڑھے ہوئے ہیں. یہ سارے ہی آپ نے اتارنے ہیں. تو کتنی ڈیووشن چاہیے آپ کو بتائیے, کتنا سیون چاہیے آپ وچار کر کے دیکھو. اس لیے گرو لکھ کر دے رہا ہے کہ 15 کی آیو سے لے کر 30 کی آیو تک کم سے کم 1 صبح 1 سائکال سمرن کرنا لازمی ہے. لازمی کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ اتنی تو ہم لینگویج جانتے ہیں. لازمی کا مطلب کمپلسری ہوتا ہے نا, تو کمپلسری میں چوائس کہاں سے آ گئی پھر آپ کی؟ آپ کو گرو چوائس دے رہا ہے کیا؟ یہ وہ جانتا ہے اسے ایشور پراپتی نہیں ہونے والی آپ کو, گرو جانتا ہے اس بات کے لیے. اس لیے وہ کم سے کم کہہ رہا ہے اس کو. اور ایج دیکھو, ایج کیا کہہ رہا ہے وہ. اور تو نے سیون کون سی ایج میں اسٹارٹ کیا ہے؟ ابھی بھی ریلیکسیشن لے رہا ہے, تو کہاں پہنچے گا؟ تو تجھے ہوش ہے اس بات کا؟ تو بار بار ہم اپنے سوبھاؤ کا ہی شکار ہوتے ہیں. جیسا جسٹیفیکیشن تیار کر لیا ہم نے, بس ویسے ہی سوچ لیتے ہیں. ارے تو نے گرو دھارن کیا ہے, وہاں سے سیکھنا گرو کیا کہہ رہا ہے تجھ کو. وہ تو منیمم پروگرام دے رہا ہے تجھ کو, 15 کی آیو سے لے کے 30 کی آیو تک کم سے کم 1 صبح 1 سائنکال سمرن کرنا ہی ہے, یہ لازمی ہے. اور پھر ایگزامپل لکھ رہا ہے وہ, کھانا کھانے سے بھی زیادہ ضروری سمرن کو سمجھنا. اور کیا کہے گا گرو آپ سے بتاؤں گی؟ ہم ایسے مول بدھی لوگ ہیں کہ اس کو تب بھی نہیں سمجھ رہے. اس سے زیادہ گرو کیا گائیڈ کرے گا آپ کو؟ میں کہتا ہوں بھائی ایک سمے تو سمرن کر لیتا ہوں, کام چل جاتا ہے. اب آگے جب پریوار پل جائے گا تب شام کا بھی سوچوں گا. یہ میرے سوچنے کے طریقے ہیں. تو یہ ہوش ہی نہیں ہے. جب یہ سنسکار کون سے بنا رہا ہے تو यहां आया था संस्कार साफ करने के लिए, तू बना रहा है इनको स्वार्थ के संस्कार। 20 साल तो यही करता रहा, कितने गहरे संस्कार हो जाएंगे स्वार्थ के, तो ये होश है इस बात का? क्या सफाई करेगा फिर? जो पुराने संस्कार थे उनकी सफाई करेगा, ये अब बनाए उसकी सफाई करेगा? तू है तू प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर चेतना है तू। ये सारी गफलत है जो तेरे ऊपर चढ़ी हुई है, इसलिए ना तो अपने आप को समझ रहा है, ना गुरु को समझ रहा है, ना इस प्रकृति को समझ रहा है। गहरी अज्ञानता में तेरा जीवन बीत रहा है, इसलिए दुनिया तेरी जरा बिगड़ती है तो घबरा जाता है फट से, सारा तेरा मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है। क्योंकि कभी मनन करने की जरूरत ही नहीं समझी, इस चीज को गहराई से सोचने की जरूरत ही नहीं समझी, ऊपरी ऊपरी बातें सीख लेते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं सब जानता हूं मैं, सत्संग में क्या बताया जाता है, ईश्वर है उसे डरना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, बस हो गया सत्संग उनके लिए, ये कह के लोग काम चला लेते हैं। तो मसला बहुत गंभीर है, ये हल्के से लेने की चीज नहीं है, इतनी क्लैरिटी संत अरदास में है। दुनिया में आज तक पूरे इतिहास, दुनिया का इतिहास जब से उपलब्ध है, इतनी क्लैरिटी से कोई शास्त्रीय रचना हुई नहीं आज तक। ये आज का वक्त ऐसा आया कि ईश्वर ने कृपा करके इतनी डिटेल्स लिखकर छोड़ दी, ये पहला मौका आया है इस दुनिया की हिस्ट्री में। उसको भी हम समझने की जरूरत नहीं समझते, तो ऐसा तो हमारा स्वभाव है जिसके जो हमको बार बार जो है वो मार रहा है, तब भी होश नहीं आ रही। तो जब तक आप इसको गहराई से नहीं सोचोगे खुद बैठकर, आप इस निर्णय पे पहुंचोगे नहीं कि मैं बहुत गलती कर चुका हूं ऑलरेडी, अब मैं गलती करता रहूं इसके लिए मैं रीजनिंग तलाश कर रहा हूं, जो गलती कर चुका हूं मैं वो गलती आगे भी करता रहूं इसके लिए रीजनिंग तलाश कर रहा हूं, जस्टिफिकेशन तैयार कर रहा हूं, जरा सोचू तो मैं कर क्या रहा हूं। तो इसलिए कोई रास्ता बचा ही नहीं है, या तो डूबने का रास्ता बचा है, और यदि डूबने से बचना है तो गुरु की बात मानने का रास्ता बचा है, और तो कोई रास्ता ही नहीं है आपके लिए। तो मैं भी पहले जब 20 साल की एज में जब होश आई, क्योंकि संगत तो कोई थी नहीं, माँ जी का लिटरेचर कोई जानता नहीं था, तो मैंने स्टार्ट ही 1 घंटे सिमरन से किया था। और जब 22 साल की एज हो गई तब भगत जी चांस की बात है घर आ गए, उनसे नाम मिल गया, तो नाम का सिमरन 1 घंटे शुरू कर दिया। और जब 30 साल की एज हो गई उस समय पहली बार आश्रम का पता लगा मुझे, दिल्ली में डिफेंस में था, तो एड्रेस पूछ पाछ के 31 साल की एज में वहां जाना शुरू किया। वहां से फिर ये समता विलास समता प्रकाश ग्रंथ खरीद के लाए, पहली बार ऑफिस में जो वो 1 घंटे का लंच होता था वहां पहली बार पहली रीडिंग इन दोनों ग्रंथों के लिए। रीडिंग करने के बाद भी उस समय बुद्धि इतनी नहीं थी क्योंकि पढ़ने की कोई आदत ही नहीं थी इस तरह की लिटरेचर कि उसमें से मुझे याद हो कि उसमें मैंने ये पढ़ा था पहली बार कि 1 घंटा सुबह 1 घंटे सायंकाल स्मरण करना चाहिए, पढ़ लिया था वो, देखिए मेरी मेमोरी में नहीं है कि वो पहली बार मैं मुझको स्ट्राइक किया गया हो कि ये जरूरी है। 31 साल की एज में पहली बार मैं यहाँ आया तपोभूमि, यहाँ पंडित रामजी दास जी के साथ रहने का मौका मिला, तब प्रैक्टिकली पता लगा कि सिमरन कितना किया जा सकता है एक दिन के अंदर। वो तो रात को 12 बजे से बैठ जाते थे और सिमरन करते रहते थे, कभी कमर सीधी कर ली सिमरन में, हम ही उनकी नकल करके उनके साथ ही चले जाते थे, क्योंकि आश्रम बड़ा छोटा सा था पहले, तो कहीं पहाड़ पे गए वो, तो हम भी आसन लेके चले गए, वो बैठे तो थोड़ी दूर हम भी जाके बैठ गए। जो भी घंटा डेढ़ घंटा टाइम मिला आपने, आदत तो थी नहीं भाई, एक घंटा 24 घंटे बैठने की आदत थी, तो सुबह को भी यही करते थे, उनके साथ चले जाते थे, जहाँ वो बैठते थे थोड़ी दूर हम भी बैठ जाते थे। तो यहाँ से सोचो कि पहली बार 15 दिन के लिए जब आया मैं 77 में, तब 5 घंटे सिमरन करने की आदत मैंने यहाँ पर लाइफ में पहली बार डाली 31 की एज। उसके बाद फिर घर जाकर शुरू किया कि 1 घंटा सुबह 1 घंटे सायंकाल सिमरन करना। तब 31 की एज में शुरू हुआ। और महा जी लिख रहे हैं कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटे सायंकाल सिमरन करना लाजमी है। तो शुरू ही हमारा 31 साल में हुआ। तब फिर जो समतावला सेकंड रीडिंग लिए हमने, तब इस बात ने स्ट्राइक किया कि अरे यहाँ लिखा हुआ है कि 30 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष तक आयु तक 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटे सायंकाल सिमरन करना लाजमी है। इसका मतलब ये तो करना चाहिए मुझे। तब जाकर प्रैक्टिस करी भाई 1.5 घंटा कैसे करें, क्योंकि अब जब आपने शुरू ही इतना लेट किया है तो एकदम से तो आप कर नहीं सकते। तो दोनों बच्चे थे, उनको भी पढ़ाते थे, ऑफिस भी दूर था 24 किलोमीटर जनकपुरी रहते थे दिल्ली में, और एयर हेडक्वार्टर जाना पड़ता था, तो घंटा सवा घंटा आने जाने के लिए भी चाहिए, घंटा सवा घंटा जाने के लिए, सवा घंटा आने के लिए। फिर दोनों बच्चों को भी बिल्कुल ही छोटे थे, उनको भी पढ़ाना ही है, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो गृहस्थी पूरी करनी है। तो समझिए कि वो 1.5 घंटा अपने को एडजस्ट करते करते, शाम को पत्नी के साथ घूमने जाते थे वो सब बंद कर दिया, कभी कभी पिक्चर देखने जाते थे वो सब बंद कर दिया, हर तरफ से टाइम सेव करके लगभग 34-35 साल की आयु में जाके 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटे सायंकाल पकड़ पाए। देखिए हर समय ये दिमाग में बना रहा कि गुरु ने जो कहा है वो मिनिमम प्रोग्राम तो मैंने करना ही करना है, मैक्सिमम का मुझे पता नहीं, लेकिन मिनिमम में तो कोई समझौता नहीं करना है। वो दिन भी आया जब पैसा कमा सकता था, किराए देने के लिए पैसे नहीं होते थे पास में दिल्ली में रहकर, मतलब कि दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन पैसा नहीं कमाया। कि जो काम जिंदगी में जरूरी है वो करना ही करना है, यहाँ काम चला रहे हैं, क्योंकि महाराज जी ने मर्यादा का जीवन कहा है, इस मार्ग पे चलना है तो मर्यादा का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, समय को बचाना ही पड़ेगा। जो मोस्ट इसेंशियल आपका आइटम है जिंदगी का वो ईश्वर भक्ति है, वो टॉप प्रायोरिटी, इसको मिलनी ही चाहिए। तो इसीलिए 35 तक आते आते वो प्रोग्राम महाराज जी का फॉलो होने लगा। उसके बाद 2 घंटे का भी महाराज ने कहा था 40-60, तो वो भी शायद मैंने कहा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 42-43 की एज हो गई, 40 की जगह 42-43 हो गई थी, वो भी 2-2 घंटे। तो इसीलिए मैंने पहले सोचा था कि 8th क्लास तक बच्चों को गाइड करना है, पढ़ाना है, इसके बाद नहीं पढ़ाना, जो बनना हो बन जाएंगे। वो आइटम सफर नहीं करना चाहिए, चलता ना, वो जो बनना था बन गया। तो जो प्रिंसिपल लिखे हैं गुरु ने खुद ग्रंथ के रूप में, तो उन पर भरोसा किया कि सारी जिंदगी प्रारब्ध के अधीन है, और तेरे साथ जितने अटैच्ड हैं उनकी जिंदगी भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए ईमानदारी से मर्यादा में ही तेरी कोशिश होनी चाहिए, उसके बाद होना ना होना प्रभु मालिक। और महा जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, प्रेमी समय सीमा के अंदर तेरी जितनी इनकम हो जाए उसमें तूने संतोषवान रहना है और उसमें गुजारा करना सीखना है। वो ये नहीं कह रहे तेरा तेरे सब चीज आराम से चलेगा, ना ना ना, वो नहीं कह रहे, उसका बड़ी तंगी हो जाती है, लेकिन तूने उसमें गुजारा करना सीखना है, और उस इनकम में संतोषवान रहना है, मैं संसार की निकल करता हूं, ये स्टैंडर्ड चल रहा है। तो गुरु गुरु की तरफ देख रहा है या संसार की तरफ देख रहा है? संसार की तरफ देख रहा है तो डूबना ही डूबना है तुम्हें, और गुरु की तरफ देख रहा है तो तेरा उद्धार होना है। तो इसीलिए जब तक आप अपने ही बारे में बारीकी से नहीं सीखोगे कि मैं क्या हूं, मेरा बंधन क्या है, ईश्वर क्या है, गुरु क्या है, ये प्रकृति क्या है, इसका विज्ञान क्या है, यदि आप इसका जो विशद विश्लेषण समता विलास में किया हुआ है, यदि आप उस गुरु ग्रंथ से ही नहीं सीखोगे इन बातों को तो कहां से सीखोगे? तो इसीलिए बार बार इन चीजों का विश्लेषण सत्संगों के द्वारा किया जाता है। महाजी कह रहे हैं प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये आपस में निरंतर बदलते रहते हैं। और गीता भी यही कह रही है, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, गीता भी यही कह रही है, गुण गुणों में वर्त रहे हैं। इसका मतलब प्राकृतिक चक्र ईश्वर हुक्म में ऑटोमेटिक घूम रहा है, निरंतर इसमें नाश हो रहा है, निरंतर इसमें परिवर्तन हो रहा है, निरंतर इसमें क्रिएशन हो रही है, सब हो रहे हैं। इसमें स्थिरता कहाँ है? जब ईश्वर की प्रकृति में स्थिरता है ही नहीं, इसकी रचना ही ईश्वर ने ऐसी की है तीन गुणों से युक्त, तो ये स्थिरता चाहिए इस प्रकृति में, फेवरेबल कंडीशन चाहिए, वो कहां से मिलेंगे? तीनों कंडीशन आएंगे तेरे जीवन। और यदि तू अपने आप को देह समझ रहा है तो वो दूसरी थ्योरी पेश कर रहे हैं कि देह पांच तत्व से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और स्थूल प्रकृति भी पांच तत्व से बनी है, और पांच तत्व के पांच विकार होते हैं। तो इसीलिए तेरा जितना भी प्रकृति के अंदर व्यवहार है, मैं इस शरीर के, वो पांच विकारों से युक्त है। तो तेरी इनकम भी पांच विकारों में फंसी हुई है, तेरा खर्च भी पांच विकारों में फंसा हुआ है, तेरा सोचना भी पांच विकारों में फंसा हुआ है, और तेरी करनी भी पांच विकारों में फंसी हुई है। जिसको सामाजिक जीवन कहते हैं, ये पांच विकार से युक्त है। तो बताइए मुझे जरा विचार करके, जो जीवन पांच विकार से युक्त होगा उस जीवन का पतन होगा या उत्थान होगा? मैं दूसरों से तुलना करके मैं बड़ा अहंकारी बन जाता हूं, मैं उत्थान कर रहा हूं। अरे गुरु को तो देख, गुरु क्या कर रहा है, तेरा निरंतर प्रत्येक पतन हो रहा है, तुझे होश ही नहीं इस बात का, और ये पतन के संस्कार तेरे अंदर बन रहे हैं मन के अंदर। तो मन जब पांच विकार का जीवन जी रहा है तो मन में संस्कार पांच विकार के बनेंगे नहीं बनेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें से सारे विकार के संस्कार तेरे मन में गहरे होते चले आ रहे हैं। विकार रहित तो केवल ईश्वर है। तो अब बताइए, तेरे पास वक्त तक नहीं ईश्वर को याद करने का, और उस ईश्वर का विज्ञान जिस शास्त्र में लिखा है उसको पढ़ने का तेरे अंदर शौक तक नहीं है, उसको टाला है तू, और पैसे वाली किताब तो बड़ी शिद्दत से पढ़ता है, बड़े शौक से पढ़ता है, बड़ी सिंसियरिटी से पढ़ता है, इतने नंबर आएंगे मेरे पढ़ूंगा तो मैं, इतने पैसे कमाऊंगा मैं तो पढ़ूंगा तो मैं, उसमें इतना तेरा गहरा ध्यान, और उसमें इतनी लापरवाही, होश ही नहीं, क्योंकि तेरा मन विकारी हो चुका है, तुझे इस बात का पता ही नहीं। कह रहा गुणमान हूं, तेरा मन तो विकारी हो चुका है, तुझे इस बात का होश ही नहीं है। तो सारी आंख तो गुरु खोल रहा है, मैं आंख बंद करके बैठा रहूं, अपने नशे में रहूं, तो गुरु क्या करेगा मेरा, गुरु क्या करेगा मेरा? मेरे लिए कोई माफी नहीं है, इसकी सजा तो मैंने भोगनी है जो गलतियां की है, कोई बचा नहीं सकता। प्रकृति का सिद्धांत अटल है, प्रकृति किसी का फेवर नहीं करती है। कई बार लगता है कि एक जो है अचानक किसी पे कृपा हो गई, वो अचानक नहीं होता कोई का प्रकृति में, वो उसका वक्त आ गया, उसने जो जो सत्पुरुषार्थ किया होगा उसका फल मिल गया उसको कृपा के रूप में। आपको लग रहा है अचानक मिल गया? तो इसीलिए ये मार्ग स्लो एंड स्टडी है, स्लो एंड स्टडी सेंस में कि नियम बनाकर आपने चलना ही होता है, और इसीलिए गुरु भक्ति, इसी का नाम गुरु भक्ति है। और गुरु भक्ति कोई नहीं होती है कि गुरु की बात पर अपने दैनिक जीवन का निर्माण करना और उसमें समझौते नहीं करते रहना, पूरी सिंसियरिटी से उसमें वो मैंने खुद निर्धारित वक्त किया है وہ نردھارت وقت میں دوں اس کے اندر, اور دوں ہی نہیں کیول جو کچھ بھی میرا سانساری جیون ہے اس کو اس کے حکم میں دیکھنا سیکھوں. کارن کرتا جان کے من کی چنتا تیاگ, کارن بھی وہی ہے کرتا بھی وہی ہے, کاز اینڈ افیکٹ دونوں ہی ہے. وہ دونوں وانی کیا کہہ رہی آپ سے, کارن کرتا جان کے من کی چنتا تیاگ, منگت دیہ پنڈ جس دیا رہو چرن تسلا. جس نے دیہ پنڈ دیا ہے تجھ کو اس کے چرنوں میں لگے رہو, میں دیہ پنڈ میں لگا پڑا ہوں. ارے میں بچوں کا پالن کر رہا ہوں, بیوی کا پالن کر رہا ہوں, سماج کا پالن کر رہا ہوں, یہ دیہ پنڈ نہیں کیا کر رہا ہوں میں. وہ کہہ رہا ہے ایشو کے چرنوں میں لگا رہو تو دیہ پنڈ کے چرنوں میں لگو ہے, اور کہہ رہا ہے میں بڑا بدھیمان. ہماری کیا پیتھیٹک کنڈیشن ہے یار, دیکھو تو ہماری بڑی دینیہ دشا ہے, تب بھی ہوش نہیں ہے, ٹالے آ رہے ہیں آئے گا, ابھی وقت آئے گا کریں گے. بہت آگے نکل آئے, غلطی کرتے کرتے بہت آگے نکل آئے, اب بھی ہوش نہیں آئی. ابھی ابھی سوچتے رہے کہ ایک سال اور لگاؤں گا, چھ مہینے اور لگاؤں گا, پتہ نہیں تیری زندگی چھ مہینے بچے بھی ہیں نہیں بچے ہیں یہ بھی نہیں پتا تجھے. تو اس لیے یہ بات ایکسیپٹ کر لو گی, ایسے ایکسیپٹ ہضم نہیں ہوتی. تو اتنے سادھن آپ کے پاس اپلبدھ ہیں, اتنے ڈیٹیل وچار آپ کے پاس اپلبدھ ہیں, وانی اپلبدھ ہے, سمتا بلاس اپلبدھ ہے, زیادہ نہیں تو کم سے کم ایک گھنٹہ تو لگاؤ روز اس کو وچار کرنے میں. کم سے کم میں کہتا ہوں ایک گھنٹہ تو لگانا ہی چاہیے آپ کو وچار کرنے, کیونکہ بہت بگڑے ہوئے ہیں. یہ بڑے گہرائی سے چنتن کرنے کی چیز ہے, تب ہم ہوش میں آئیں گے. یہ تو اوپر اوپر سے نیم پالن کرتے رہے تو زندگی بڑی چھوٹی سی بھائی, اور سنسکار کتنے گہرے ہیں آپ کے اندر, وچار کر کے تو دیکھو کیسے ہوا کام. اسی لیے یدی میں واسطہ میں دیہ ہوتا تو مجھے کوئی چنتا کی بات ہی نہیں تھی, دیہ مر گئی کھیل ختم ہو گیا, میں ہوں جیو اور میری سمپتی ہے میرا من, ساری کرنی سارے سنسکار میرے من کے اندر موجود ہیں, وہ پٹارا میرے سنگ ہے, موت بھی اس پٹارے کو نشٹ نہیں کر سکتی. ساری سمپتی من کے روپ میں میرے مجھ کو بچپن سے ہی سنگ مل جاتی ہے, اور وہی من میرا برین بھی تیار کرتا ہے. اگلے جنم میں برین بھی آپ کو ایسا ہی ملے گا جیسا آپ نے سوبھاو تیار کیا ہے, جیسے گن تیار کیے آپ, یعنی اب گن تیار کیے تو اب گن کے روپ میں ملے گا. تو آگے کتنی محنت کرنی پڑی اگلے جنم میں بھی آپ کو, تو اس جنم کو کیوں برباد کر رہا ہوں. تو اس لیے ایک بیسک کلیئرٹی ہمیشہ بنی رہنا چاہیے, میں جیو ہوں کیونکہ مجھے ہوش ہے, میں جانتا ہوں. تو نوئنگ فیکلٹی کو جیو کہتے ہیں. اور میں کیا کیا جانتا ہوں, جو چیز جانتا ہوں سب بندھن ہے میرے لیے. من کو جانتا ہوں, یا یوں کہ یہ من کے تھاٹس کو جانتا ہوں, وہ میرے لیے بندھن. تن کو جانتا ہوں, تن کی کریا کو جانتا ہوں, وہ میرے لیے بندھن. پرکرتی کو جانتا ہوں, پرکرتی کے کرم کو جانتا ہوں, پرکرتی کے گن کو جانتا ہوں, وہ میرے لیے بندھن. جو کچھ بھی جانتا ہوں سارا بندھن ہے میرے لیے, اور میں اس کو گہرے کر رہا ہوں, اور اس کو مٹانے کے بجائے میں گہرے کر رہا ہوں. اس کے لیے جی کا کہہ رہا ہوں, ابھی سوچوں گا, نرنے لوگ کروں گا ذرا. تو میں بندھن بڑھانے کے کرم آلریڈی بہت کر چکا, اب تو ہوش میں آ جاؤں. ابھی تو ایکسلریشن چل رہا ہے, اسپیڈ میری بڑھ رہی ہے, ریٹارڈیشن تو شروع ہی نہیں ہوا. پیچھے آنا بھی ہے, پیچھے لوٹنا ہے. اس لیے ذرا بھی یدی ہوش ہے زندگی کا تو گرو کی اوگیا نہیں کرنی چاہیے. گرو کا جو منیمم پروگرام ہے آپ جتنی جلدی سے جلدی فالو کر سکتے ہو. یدی آج میری آیو 45 کی ہو گئی, 50 کی ہو گئی, تو میرا وقت ہو گیا 2 گھنٹے صبح, 2 گھنٹے سائیکال ایشور کو دینے کا. 4 گھنٹے میں نے ایشور کی گود میں ہی بتانے ہیں, باقی سمے میں نے گزارا کرنا سیکھنا ہے. گزارا میں اس بات سے کہہ رہا ہوں, میں نے ڈھیر نہیں لگانا سو گئے, میں نے گزارا کرنا سیکھنا ہے باقی وقت. तो इसलिए मैं उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाऊं, जो मैंने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होंगे, बड़ी बड़ी उम्मीदें संसार से पाली होंगी, उसको स्क्रैप बॉक्स में डाल दूंगा। क्या कीमत है इसकी? आप किसी को कोई अज्ञानता में कोई कहीं घूमने का प्रोग्राम बना ले और बाद में पता लगे अरे वहां के लोग तो बड़े खतरनाक हैं, वहां बिना लूटे नहीं आओगे, वहां से हो सकता है कत्ल भी कर दोगे आप, तो प्रोग्राम बनाए रखोगे कब तो मैंने बना लिया या चेंज करोगे उसको? अरे भाई अज्ञानता में बना लिया, अब पता लग गया है इसे मेरा नुकसान है, मैं बदल लेता हूं, इसमें देर का क्या मतलब हुआ? अपने स्वभाव के वशीभूत होकर मैं गलती कर बैठा यदि, तो अपने लिए ही तो जी रहा हूं मैं बदल लेता हूं उसको। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि संस्कार हमारे अंदर वो इसको लोभ कहते हैं, लोभ के संस्कार किसी के गहरे होते हैं, किसी के अंदर अहंकार के संस्कार बड़े गहरे होते हैं। नेता बनने के ख्वाब पाल लिए उसने अहंकार के कारण, क्योंकि अहंकार की पुष्टि होती है उसमें, लेकिन सारी जिंदगी फंस जाती है, इसका होश ही नहीं रहा उसको। तो यदि उसको होश आएगा तो प्रोग्राम बदल लेगा, कहेगा भैया मैंने नेता नहीं बनना। अरे भाई जब उसमें मैंने डूबना है तो मैंने नेता नहीं बनता, तो निर्णय बदलने में इतनी देर क्यों? क्योंकि संस्कार बड़े गहरे हमारे बन गए। तो अब आयु कितनी सी बची है जरा विचार करके देखो। तो इसलिए इसको बंधन करके जब तक नहीं दोगे, इसलिए वो जीव का बंधन क्या है वो डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूंगा 15 दिन में एक बार खुद जरूर सुनना चाहिए, और कम सुनना चाहते हो तो महीने में एक बार जरूर सुनो। केवल सुन मतलब वर्ड्स मत सुनो, थिंकिंग करो उस तरह से, उस तरह से आपकी वे ऑफ थिंकिंग उस तरह की होनी चाहिए। तो आप खुद देखोगे कि मैं इसको बंधन करके ही देख रहा हूं या अभी भी खाली सुन रहा हूं, एनालिसिस करके आपको पता लग जाएगा। यदि आप उसको उस एनालिसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो जो कि समता अभ्यास में मौजूद है, वो समता अभ्यास में ब्रीफ में है, डिस्कशन में डिटेल में है, ये अंतर तो है वो है भाई जी। तो मेरा सारा का सारा बंधन है, इस बंधन को मैं एंजॉय कर रहा हूं। देखिए जो चीज आपके लिए बंधन है उससे बचने की जरूरत है या उसको एंजॉय करने की जरूरत है। किसी मित्र के बारे में पता लग गया ये मित्र धोखेबाज है, तो उस मित्र के साथ एंजॉयमेंट करोगे आप या उससे बचने की कोशिश करोगे? नहीं पता था तो धोखे से कर रहे थे, जब पता लग गया फिर तो उससे बचना चाहिए। तो इसलिए अपने बंधन को काटो भैया, डूब क्यों रहा? तो मैं जीव हूं इस संसार में, मेरे यदि कोई भी है केवल ईश्वर है जो खुद निर्बंधन है। वो प्रकृति के बंधन नहीं है, प्रकृति उसके बंधन में। तो जो सबका मालिक है मेरा भी मालिक है, उसका होके मैं क्यों नहीं चलता? उसमें शांति है, उसमें आनंद है, उसमें निर्भयता है, उसमें परम संतोष है, और वो परम कृपालु है, मेरा संग कभी नहीं छोड़ता, वो मौत के वक्त भी मेरा संग नहीं छोड़ता। अरे ऐसे ईश्वर को मैं छोड़े बैठा हुआ हूं संसार के चक्कर में? सोचू तो मैं जरा, जिस गुरु ने बचपन से पकड़ लिया उस ईश्वर को, बेचारे पहाड़ से गिर पड़े नीचे, ईश्वर तब भी नहीं छूटा। ईश्वर कैसा कृपालु, दफ्तर में लेट हो जाने में तो ईश्वर खुद आके उनकी ड्यूटी कर गया। सोचो तो सही, ऐसे ईश्वर को हम छोड़े बैठे हुए। और जो संसार मैंने अपना बनाया हुआ, मेरा परिवार, आप खुद देख लो, यदि आपकी आपको डेथ हो जाए, उनकी बातें रिकॉर्ड की जाएं, तो एक ही बात कहेंगे वो, अरे उनके बिना जिंदगी हमारी कैसे बीतेगी, हमारे लिए ये करते थे, हमारे लिए वो करते थे, उनके बिना तो हम मर जाएंगे। अब अपने स्वार्थ को याद कर रहे हैं या तुमको याद कर रहे हैं? जरा विचार करके तो देखो। तो इस मोह की नगरी में हम फंसे पड़े हुए हैं, मैं और मेरा के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसी का नाम ममता है। ये मैं और मेरा जो है इसी को ममता कहते हैं। तो जो ममता जहर है तेरे लिए, उसके लिए तो जीवन व्यतीत कर रहा है। इसको तूने तू और तेरा में बदलना था प्रभु, तू ही है, तेरा ही है। میرا بھی تو ہی ہے. تو اس کا پریم سے یاد کرنی تھی, وہ انتریامی ہے, اندر بیٹھا ہوا ہے, باہر تو نے کام چلا تھا بس. سب کو کھانا چاہیے, میرا کرتویہ بنتا ہے, ہاں پریوار والوں سب کو کھانا مل رہا ہے, رہنے کو جگہ چاہیے, سب کی رہنے کی ویوستھا ہے, پہننے کو کپڑا چاہیے, ویوستھا ہے, نارمل خرچے کے لیے ایمنیٹیز چاہیے, ویوستھا کر دی, باقی اس کی یاد کر. تو اسی لیے بدھیمانی اسی میں ہے کہ اسی طریقے سے سوچے زندگی کے بارے میں. اور یہ آپ تبھی سوچو گے جب گرو پر گہری نظر رکھو گے. اور گرو پر گہری نظر ہوتی ہے اس کے وچن پر گہری نظر رکھنا, اس کے انوسار نرنتر سوچتے رہنا, ہر باریکی جیون کی اس کے وچاروں کے آدھار پر مطلب کہ اس کا چنتن کرتے رہنا, تب آپ بھولوں سے بچ پاؤ گے اور صحیح نرنے لے کر صحیح چل پاؤ گے, اور یہ جیون آپ سفل کر لو گے. سفل اسی روپ میں کہ ایشور کی بھکتی کے سنسکار آپ بنا لو گے, اور سنسار کے جو سنسکار سوارتھ کے بنے ہوئے ہیں, سکھ بھوگوں کے سنسکار بنے ہوئے ہیں, اس کے پتی آپ کے من میں پشچاتاپ کے سنسکار بن جائیں گے کہ میں نے کتنی غلطی کی, کتنا جنم میں نے ویرتھ کھویا, اس کا پشچاتاپ آپ کرو گے. وویک آپ سے کروائے گا کہ کاش یہ ہوش مجھے یدی 20 سال پہلے آ گیا ہوتا تو 20 سال تو بچ جاتے زندگی کے, ستوگنی سنسکار میں بنا لیتا. اس لیے جو غلطی کر لی اب اور مت کرو, ٹالو مت, یہ وقت ٹالنے کا نہیں ہے, آج بھی بہت ہو چکی. اس لیے بھائی میں تو یہ کہوں گا گرو بھکتی کرو, گرو بھکتی ہی ہمارے لیے ایشور بھکتی ہے, کیونکہ گرو اور ایشور ایک چیز ہے. اور گرو بھکتی کا مطلب گرو کے دیہ کی بھکتی نہیں کر رہے ہیں, گرو بھکتی کا مطلب ہے ایشور بھکتی ہی کر رہے ہیں, اس کا روپ کیا ہے وہ گرو سمجھا رہا ہے, اس کے انوسار چل رہے ہیں, اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم گرو بھکتی کر رہے ہیں. تو جیون کی سفلتا ایشور بھکتی میں ہے, اس سوت کو نہ بھولیں اور اس پروگرام کو آگے ٹالیں نہ. اور 5 سال ذرا ویٹ کر لیتا ہوں, پھر گمبھیرتا سے چلوں گا. گمبھیرتا سے آج سے ہی چلنے کی ضرورت ہے, یہ ٹالنے کی ضرورت نہیں. اوم برہم ستیہ.